Mesmo que estava com o caráter lindo. Mas tudo que eu senti permaneceu na terra. Nada que veio para onde eu vim. Fiz por causa do sistema. Mas quando eu falava lá, que se reclamava de puta para a vida, a minha puta do mundo, mora em São Paulo.
जब से भगवान उस व्यक्ति के मन में प्रकट हुए
इसी प्रकार देवकी ने मनस्तर मन से धारण किया कृष्ण को और वसुदेव जी ने मन से ही दिया, मन से मन दिया साक्षात भगवान मच्छे दिया। जैसे कोई पुरुष छोटे से बच्चे को दे और कोई स्त्री को तो धारण कर ले, इस तरह से वसुदेव जी ने दिया। तो जगत मंगल भगवान की श्रीमूर्ति समस्त जीवों का मंगल करने वाला है, मंगल स्वरूप है, सबसे बड़ा सुख सबसे बड़ा आनंद भगवान के श्रीनिधर में है, रूप में भगवान आ रहे हैं इस जगत में। अब समस्त जीवों का भाग्योदय हो रहा है, भगवान का इस जगत में आना ही सबसे बड़ा मंगल है। यहाँ अवतार लेकर के आना, यहाँ क्रीड़ा करना, जीवित लीला करना, इस जगत के मंगल के लिए होता है। जगत मंगल, जगत मंगल कोई दो चार आदमी के लिए नहीं, सभी जीवों के हित के लिए भगवान का तो रूप है, अवतार होता है। तो जगत का अशेष मंगल करने वाला जो रूप है श्री मूर्ति है, उसको वसुदेव जी ने मन से दिया और माता देवकी ने अपने मन में धारण किया, इसको अवतार कहते हैं। अवतरति सवतर अपने गुरु धाम से प्राकृतिक जगत में आ रहे हैं, यही उतरना हुआ। और उतरे और इस तरह से पिता के मन में उतरे, वसुदेव जी के मन में उतरे, वसुदेव जी के मन से फिर देवकी के मन में आए और देवकी के मन से तब गर्भ में आए, उतर रहे हैं से प्रकट हुए कंस के कारण। और यह कोई अवतार नहीं कि श्री कृष्ण के संग से बीच में जीव को बैठा दिया जाता है और गर्भ में प्रवेश करता है, यह शरीर बनता है, उसका जन्म कुछ काल के बाद बढ़ता है, वृद्ध होता है, मरता है। भगवान का श्री विग्रह ऐसा नहीं है, उसमें सब विकार नहीं है। जैसे इस जगत में सबका जन्म होता है, जायते वर्धते, पहला विकार है जन्म, जन्म लेना है, और दूसरा विकार है वर्धते बढ़ना। और तीसरा विकार है अस्तित्व, कुछ समय तक रहना है, कुछ समय रहना है, और उसके बाद चौथा विकार है परिणाम, कुछ पैदा करना है, कुछ बच्चा पैदा करना, चाहे केस उत्पन्न करना, नख उत्पन्न करना या मलमूत्र पैदा करना, ये सभी शरीर का काम है, इसको विकार करते हैं चौथा। और पांचवा है अपक्षा, ये क्षीण होता ही नहीं, किसी होना, बूढ़ा होना। और अंत में छठवा विकार है विनाश शक्ति, विनाश हो जाना, मृत्यु। सबके बाद छह विकारों में शरीर पड़ा रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। कि भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। यही बात सिर्फ सदैव गोस्वामी महर्षियों की सभा में बोल रहे हैं। भगवान अजन्मा है, अजन्मा का अर्थ है इसका जन्म नहीं होता। भगवान गीता में अपने मुख से कहते हैं अजो विषम अध्याय आत्मा, मैं अजन्म जन्म रहित हूं और अव्यय आत्मा, हमारे आत्मा में हमारे शरीर में हमारे स्वरूप में कोई व्यय नहीं है, कोई विकार नहीं है, अव्यय आत्मा और सबका शरीर व्यय होता है। देवता मनुष्य पशु पक्षी सबका शरीर व्यय होता है, क्षीण होता है, नष्ट होता है, लेकिन भगवान कहते हैं अव्यय आत्मा, मेरा स्वरूप अव्यय है। प्रकृतिम स्वाम अधेश आय सम्भवान आत्मा है, मैं अपनी प्रकृति में अपने स्वभाव में स्थित रहता प्रकट होता हूँ, सम्भवान आत्माया, मैं अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से सम्भवान हूँ। और हम लोगों का विचार होता है अपनी इच्छा से नहीं होता है, माया प्रेरित करती है जन्म लेने का शरीर लेने का। अपनी इच्छा से जन्म लेना होता तो सबसे धनी सबसे बड़े विद्वान और अच्छे जगह पर जन्म लिए होते। कितने लोग तो अपनी इच्छा से जन्म लेना होता तो जाकर अमेरिका में जन्म लेते है कि नहीं, अभी भिसा के लिए लोग हैं जन्म ही वहां हो जाता तब कहना क्या है। तो अपनी इच्छा से नहीं जन्म होता है, दूसरे की इच्छा से माया की इच्छा से, लेकिन भगवान अपने स्वभाव में और अपनी प्रकृति में प्रत्येक स्वाम आदेश ढाल अपने स्वभाव में रहकर और अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं। कुछ मूर्ख लोग बोला करते हैं कि आप कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण मर गए चले गए। इन मूर्खों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना है ना। भगवान न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं, यहाँ तक कि जो जीव है जीव भी कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। न जायते मृते वा कदाचि, न जायते मृते वा कदाचि, नायम भूतः भूता वा दुनिया। यह जीव कभी जन्म लेता है और न तो मरता है, कभी कभी नहीं, किसी भी स्थिति में उसकी मृत्यु नहीं है। तो फिर जीवों के कारण परमात्मा भगवान की मृत्यु कैसे हो, वो तो है और सब में है। इस बात का ये लायक करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए कि भगवान सब जगह है और अपने स्वरूप में है, अपनी पूर्ण शक्ति में है। प्रश्न ने पूछा कि कब कब आते हैं आप अवतार, कब कब लेते हैं। तो चंद्रमा रहता है घरों से ग्लानी होती, जब जब धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने को प्रकट करता हूँ। फिर प्रश्न हो सकता है कि क्या करने के लिए, अधर्म बढ़ता है तो अधर्म बढ़ाने क्या करनी क्या। भगवान ने कहा जब अधर्म बढ़ता है धर्म नाश होता है तब तो मैं आता हूँ, तो क्या करने के लिए। तब तब भगवान कहते परिक्रमा जो साधना बिना साधन दुष्ट मैं भक्तों की रक्षा के लिए परिक्रमण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार जो दुष्कृति है जो बहुत घोर कर्म करते हैं हिंसा विचार जुआ आदि खेलते हैं सब दुष्कृति है तो दुष्कृतियों का पापियों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए परित्राण के लिए मैं होता रहता और इसके बाद ही भगवान लगातार इस बात कहते हैं कि जब कर्म समय मेरे धन कर्म दिन में इस बात को ठीक से जानता है वह अपना पत्र देह छोड़ने के बाद फिर पुनः जन्म में नहीं आता तो भगवान की यही इच्छा है कि भगवान के जन्म को समझा जाए और कर्म को समझा जाए कैसे समझेंगे जब बारंबार उसको पढ़ेंगे बारंबार उसको सुनेंगे तब समझेंगे और भगवान के धर्म कर्म को समझने का यह प्रभाव है कि हम धन मनुष्य मुक्त हो जाए भगवान के पास चले जाएंगे मां के लिए वो मेरे पास आ जाता है पुनर्जन्म नहीं पुनर्जन्म में नहीं जाता है भगवान के पास जाकर के भगवान की नित्य लीला में कृष्ण की सेवा करता है पार्षद हो जाता है ये जन्म कर्म को जानने का फल है इस भागवत सत्र के उपक्रम में कहा था और सबसे है कि इसमें भगवान के जन्म की चर्चा हो रही है कभी कभी भक्त लोग पूछा करते थे हरेक सारे जन्म की कथा क्या जरूरत है कौन कथा महाराज जी कहेंगे जन्म ऊपर सब कहे थे हर साल कहे थे तो हरेक साल जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं फ्रेश हरेक साल भगवान का जन्म हो ही गया है तो आप क्या मनाते हैं फिर भी भगवान का जन्म को हम लोग मनाते हैं तो उसी तरह से उनकी कथा भी अलग साल हो तो क्या है इस तरह से समझना पूछते थे कौन पसंद होगा कौन पसंद होगा एक जन्म का पसंद इसके पहले बलराम जी का जन्म हो गया देखिए कैसे चीज जन्म है बलराम जी एक ही शरीर से एक ही शरीर से देवकी जी के गर्भ में रहे और बाद में नहीं गर्भ आकर्षण किया गया जो माया के द्वारा तो देवकी को पता भी नहीं चला दर्द होने की बात तो बहुत दूर रही पता भी नहीं चला क्या आज के युग में कभी भी कोई किसी को ऐसा कला मरण है किसी स्त्री के गर्भ को गर्भस्थ शिशु को बाहर किया जाए और उसको पता भी ना चले और बच्चा को दूसरे स्त्री के गर्भ में डाला जाए बिना ऑपरेशन ऑपरेशन से तो जिएगी नहीं ना बच्चा जिएगा दोनों मर जाएगी लेकिन बलराम जी को डाला गया रोहिणी के कर्म में ये भी उनको पता नहीं चला आनंद सरकार हो गया ये भगवान का दिव्य जन्म है जन्म कर्म अच्छा नहीं है इसी तरह से भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं व्यक्ति का एक सूत्र के समान ऊपर हो गया यथा रवि। इस जगत में जितने तेजस्वी वस्तुएं हैं प्रकाशमय उनमें सबसे श्रेष्ठ है सूर्य। सूर्य के समान तेज बढ़ गया इस पर ध्यान देना चाहिए। भूत वसुदेव जी तेज बढ़ गया और वह तेज कहाँ से आ रहा है उनके मन से। मन में भगवान आ गए हैं इसलिए तेज बढ़ गया। ऐसा तेज बढ़ा के फिर कभी कारागृह में जेल में हंस बिरयाने की सांस नहीं करता देख नहीं सकता था वसुदेव जी। और फिर उनको जातना या बोलना उनको बहुत दूर की बात देखना भी असंभव हो गया। चंद्र सूर्य पर कौन अंक उठा करके देख सकता है। अगर सूर्य बिल्कुल निकट आ जाए तो कोई देखेगा उसी समय आंखें चौपट हो जाएंगी देखते हैं। तो दूर सूर्य है करोड़ों योजन दूर है तो वहां ऊपर देखा नहीं जाता। फिर निकट जो बिल्कुल आ जाए तो कौन देखेंगे। तो इस तरह से वसुदेव जी पर देखना उनके निकट होना भी मुश्किल हो गया। और फिर उनको अभिभूत करना तो भगवान को वसुदेव जी ने देवकी के मन में दिया। भगवान भक्ति के कारण वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने भक्ति पूर्वक भगवान को माता देवकी के मन में अर्पित किया। देवकी जी ने ग्रहण किया। देवकी ने मन मनस्त मन से धारण किया। सादे वकी सर्व जगत निवास निवास भूता नितरान रेजे भोजन के सिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खरे चथा सती। देवकी ने कृष्ण को अपने मन में धारण किया तब उसके विषय में सुदेव कहते हैं सात देवकी वह देवकी महामहिमामयी भगवान की जननी वह देवकी सब जगत निवास निवास होता सारा जगत जिनके भीतर है सारा जीव समुदाय सारी वस्तुएं सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके भीतर है जिनके रोम कूप में है। हम लोगों के शरीर में बहुत से रोए हैं और वे एक रोमा खाड़ी तो उसमें गड्ढा बनता है उसको रोम कूप कहते हैं रोए का कुआं। तो रोम कूप में भी भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मांड में अनंत अनंत लोक है और उन लोकों में अनंत अनंत जीव। तो सब जगत निवास निवास होगा सारा जगत जिनके भीतर निवास करता है वे प्रभु देवकी के मन में निवास कर रहे हैं। सर्व जगत निवास की निवास भूता पर सारा जगत जिसके भीतर है वे भगवान देवकी के भीतर है। लेकिन ऐसा होने पर भी
करने पर धरता है।
लेकिन ये सरस्वती जी का भंडार है, इसको जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। श्रीमद् प्रभुपाद जी इस संघ पर लिखते हैं, बहुत काल से भगवत गीता की विद्या, भगवत गीता का ज्ञान अवरुद्ध रहा है। कंस के कारागृह के समय भारतवर्ष में अवरुद्ध रहा, लेकिन श्रीमद् प्रभुपाद जी इस विद्या को, इस ज्ञान को ले गए बाहर, विदेशों में बांटा, देश जीवन का कल्याण होता। आज आप देख रहे हैं जीव सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भावना से युक्त होकर के कृष्ण के धाम में आते हैं। अमेरिका से, यूनाइटेड से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, सब जगह से जीव आते हैं। क्यों? उनको कृष्ण का ज्ञान मिला, समझ में आ गए कि कृष्ण मोर प्रभु जीवित रह गया, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हमारे परमेश्वर हैं, हमारे ईश्वर हैं। यह ज्ञान हुआ, वो ज्ञान से आकर के भारतवर्ष में घूमते रहते। यह प्रभु का जी कृपा है, उन्होंने इस वेद विद्या को श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में जो वेद विद्या है उसको ले जाकर के बांट दिया। हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका निकलती है जिसका नाम कल्याण है, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। कल्याण कल्याण के संस्थापक यानी संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार है, और इसके संस्थापक है परम सर्वेश श्री जयदेव डालमिया जी। जयदेव डालमिया ने बहुत दृढ़ नियम बनाया था, कल्याण के बाहर का विज्ञापन नहीं छपे, कल्याण में कभी जीवित व्यक्ति का फोटो नहीं निकला जाए, नहीं छपा जाए, नियम था। और बहुत जयदेव ने जयदेव वृंद का नियम के बहुत बड़े पक्के व्यक्ति थे, भाई जी उनके फॉलोअर थे। और जब श्री प्रभुपाद जी अपने 40 शिष्यों के साथ भारतवर्ष आए, इस नियम को भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने तोड़ दिया। उन्होंने साथ लिखा, स्वामी जी जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में बहुत अच्छा है, और इसका प्रचार केवल कल्याणी ही भारत के सभी पत्रिकाओं में और संसार जितना न्यूज पेपर छपता है, जितनी पत्रिकाएं सब पे इंग्लिश फैलाना चाहिए सब। और प्रभुपाद जी का फोटो छपा और भक्तों का कीर्तन करते हुए कल्याण छपा। आज मुझे के पास कल्याण होगा, मैं देख सकते हैं प्रभुपाद जी का फोटो, प्रभुपाद जी के शिष्यों का कीर्तन करते हुए। घड़े में बंद है, दीपक के सबसे बड़ा सहयोग मानव जाति के लिए, सबसे बड़ा हित यही है कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान दिया है। ज्ञान देकर के ये नहीं कहा कि बस थोड़ा श्लोक रटो और समझो या न समझो, अंत्याक्षरी में बोला उसके अर्थ को समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी अर्थ को समझा है। कई बार नौ अध्याय के इस श्लोक को पढ़ा था, सत्तर कीर्तन तो मान, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। प्रभुपाद जी के शिष्यों का कीर्तन देख करके समझ में आ गया। पहले में सकता था कीर्तन करना ये थोड़े भक्ति है, लेकिन समझ में आया प्रभुपाद जी के व्याख्या को पढ़ करके और उनके शिष्यों के आचरण को देखकर ये अर्थ है। सप्तम कीर्तन तो इस तरह प्रभुपाद ने सारे विश्व को एक दान दिया, गीता पहुंचा रहे, भागवत पहुंचा रहे। जब अमेरिका गए तब अक्षय में अपना भागवत लेकर के गए, भागवत का प्रथम स्तंभ तीन खाने में छप चुका था। भाई के नाम सब प्रताप में डालमिया ट्रस्ट से उसको छपवाया, और अमेरिका जाने के लिए मुरारजी श्रीमती मुरारजी से आग्रह कर रहे थे। मैं मिला था एक बार श्रीमती जी से वहां जुड़ू में, तो बता रहे थे आपके गुरु महाराज कितना वृद्ध थे, हमसे जिद करते थे हमको बंधने के लिए, और मैं डरते थे कि बीच में ही ये सन्यासी मर जाएगा, हम पर पाप लगेगा, हत्या, ये कोई उम्र विदेश जाने की है। लेकिन प्रभुपाद जी के मन में अपने गुरु के वाक्य को सत्य करने की इतनी लालसा थी और इतना उत्साह था, जाना चाहते थे, ज्ञान जाएगा अमेरिका में तो निश्चित लोग भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे, वो विश्वास है, बार बार आग्रह करते थे। और माल ढूंढने वाले जहाज कंपनी चलते थे, जहाज खुलते थे बॉम्बे से कलकत्ता से, तो कलकत्ता से खुलने वाला जहाज इसी काम से कलकत्ता है, और कलकत्ता में जलदूत नामक जहाज से अमेरिका गए। जबकि अमेरिका जाते समय दो बार प्रभुपाद जी को हाथ पैर हुआ, समुद्र की हवा अनुकूल नहीं थी, तो श्री वृंदावन धाम से श्री प्रभुपाद जी कलकत्ता गए, कलकत्ता से कितना बड़ा उत्साह था, कितनी बड़ी बड़ा भगवान का प्रचार होना चाहिए। 72 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में विदेश गए, एक दिन उन्होंने कहा था, मैं उनके रूम में एकांत में बैठा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते थे, हमने कह दिया कि मंदिर बहुत बड़ा बनाते हैं, छोटे छोटे मंदिर देखे थे हम लोग, प्रभुपाद जी कहते थे, तो छोटा नहीं, ये बड़ा मन नहीं, छोटा है, छोटा तो रहेगा। बहुत लोग आएंगे इस मंदिर में तो भविष्य दृष्टा देख लिए, मंदिर में बहुत लोग आएंगे। तो बात बिल्कुल सत्य है, इंटरनेशनल मंदिर है, पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं, सालों भर आते हैं। इस कारण से अन्य सब मंदिरों में भी भीड़ बढ़ गई, और केवल हिंदू धर्म ही नहीं, श्रील प्रभुपाद के कारण ईसाई धर्म भी बहुत बढ़ा है। मैं एक बार सिनसिनाटी गया था, अमेरिका के शहर में, हमारे श्री श्यानंद कुमार दास, तो उनके साथ गया था एक सनातन धर्म मंदिर में, ले गए थे तो देखा बहुत लोग आए हुए हैं सनातन धर्म मंदिर जाने का। मैं पूछा कि यहाँ बहुत लोग जुटे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब प्रभुपति की देन है, जब से इस कांच के मंदिर में जन्म खुल रहे हैं तब से और सब मंदिर आबाद हो गए। अब लोग सीख लिए, कम से कम संदेह को आना है मंदिर आते हैं। एक दिन रोड पर न्यू जर्सी में नीलमणि दास के साथ में घूमने गया था, एक जगह बहुत कारें खड़ी थी, बहुत बड़ा पार्किंग था, और संडे मैं कहा था यहाँ लोग क्यों जुटे हुए, कोई खेल हो रहा है क्या? उन्होंने दिखाया कि उस सामने एक चर्च है, वहाँ लोग आए हुए हैं चर्च में संडे को आते हैं। तो वे कहने लगे कि श्रील प्रभुपाद जी के मुस्कान को देख कर, रथ यात्रा को देख कर ईसाई लोग भी अब चर्च में रेगुलर आते हैं संडे को, बहुत संख्या का है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे क्राइस्ट का सच्चा फॉलोअर मैं हूं, खुला खुला बोलते ने कहा है कि तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, तो मांस खाने वाले तो हत्या करते ही है, मांस हत्या से मिलेगा ना, तो जरा सामने खोज लाओ एक भी व्यक्ति को जो सच्चा क्राइस्ट का प्रभु है। नहीं खोज पाओगे, मैं क्राइस्ट का सच्चा प्रभु है। प्रभुपति के शिष्य जो मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं और व्यभिचार नहीं करते हैं, ये सच्चा स्वरूप। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने केवल सनातन धर्म को ही नहीं पढ़ाया, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को पढ़ाया, सबको शिक्षा दे। शिक्षा यही है कि ईश्वर से प्रेम करने ही धर्म है, कोई खास रिचुअल मात्र धर्म नहीं है, ईश्वर को जानना और ईश्वर से प्रेम करना ही धर्म है। तो श्रील प्रभुपाद की कला बाहर लोग सीख गए, चर्च में संख्या बढ़ गई, और सारे मस्जिद में भी संख्या बढ़ गई। भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ी है लोगों को। श्रील प्रभुपाद जी के पहले केवल वैज्ञानिकों में श्रद्धा थी, केवल साइंटिस्ट लोगों, लेकिन साइंटिस्ट लोगों का प्रभुपाद इतना गाली दिए, रिस्क कृष्ण का, उसने देखा कि बहुत आनंद में है, आनंद धन भगवान के पाए आनंद में तो आनंद में है। उसके मुख पर सुचे स्मित सुख की मुस्कान है, मुस्कुरा रही है, उस परम आनंद से आनंद विकीर्ण हो रहा है, मुख पर मुस्कान की और प्रभाया अपनी प्रभा से चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश प्रभा से आनंद से भवन को जगमगा रही थी। वो जेल के दीवारे भी जगमग कर रही थी, जेल बहुत अच्छा लग रहा है। भवन विरोचन देवकी के कारण भवन जगमगा रहा है। आहाय समय प्राण हरो भरी कौन, देवकी को देखते ही कौन कहने लगा अपने मन में कहा इसके गर्भ में निश्चित विष्णु आ गया है। मेरे प्राणों को हरने वाला हरि इसके उदर में आ गया है। मेरे प्राण हरो हरि, मेरे प्राणों को हरने के लिए हरि आ गया है। वहां से अब जैसे सिंह है, सिंह को भी हरि करते हैं, जैसे सिंह गुफा का आश्रय लेता है, वैसे ही यह हरि मेरे प्राण को हरने वाला आकर के अपने मान के अंदर में आश्रय दिया है। पहले यह ऐसी नहीं थी, पहले मैं देखा हूं कई बार देवकी को, यह रोती रहती थी, खीन रहती थी, चेहरा घुमाया रहता, लेकिन अब ये हंस रही है, आनंद में है। तो पूरा यह की दृष्टि न पहले ऐसी नहीं थी, कारण क्या है कि निश्चित ही हरि इसके गर्भ में आ चुका है। यह सोचते हैं यह मन में है तब मुझे क्या करना चाहिए, मध्य तस्वीर करनी है मास आज मुझे जल्दी से जल्दी इसके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, इस हरि के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। हरि गर्भ में आ गया है तो इसके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, इसी की प्रतीक्षा कर रहा था इतने वर्ष से। मेरे प्राणों को हरण करेगा, मेरा वध करेगा, इस हरि के प्रति मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए। आप आज अयाई समय क्या व्यवहार करना चाहिए, मध्य तस्मिन करनी नाचना, तस्मिन इस हरि के प्रति कृष्ण के प्रति अब मुझे किन करना क्या करना चाहिए। एक बात मन में है कि अब करना क्या है, कर्म में है मानव कर्म में खत्म हो जाए, बच्चा कर्म में है तो फिर पर अगर घात किया जाएगा तो मानी जाएगा, थोड़े काल में मान लीजिए बच्चा हल्का विषय तो इस उपाय कितना निकट आ गया है देख रहे हो तो मारो कर्म है तो कंस नहीं है, यह काल नहीं है। कंस सोच रहा है मन में महास्वार्थी आदमी भी अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता है, अपना गौरव खत्म नहीं करना चाहता है। अर्थतंत्र व्यक्ति जो अपने मतलब के खेल बनाता है वो भी बहुत ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे उसके नाम पर सवाल होगा। अच्छा एक जन्म हो जाए तब मार देना, अभी मारना उसको मारो मार करके चलिए, स्त्री की मृत्यु हो जाए बहन की मृत्यु हो जाए, स्त्री या ससुर को मन क्या करे, एक तो यह स्त्री है और विवाह हुआ था उसमें पुरुष था क्या अब स्त्री हो गई, अब कंस के मन में सब विचार आ गया है, एक तो यह स्त्री है दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है, अगर इसका वध कर दूंगा तो उसी समय मेरा धन मेरी आयु मेरी प्रतिष्ठा से मेरा यश मेरा धन स्त्री और आयु खत्म हो जाएगी, देवकी को बारंबार मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसको मारने से मैं मर जाऊंगा, मेरा यश खत्म हो जाएगा। देवकी के हृदय में भगवान आ गए हैं इसलिए देवकी को देख करके अब सब विचार आ रहा है, तो पहले उसमें के समझाने पर भी चोटी पकड़ लिया था, काटना चाहता था, बहुत इनको मेहनत करना पड़ा तब जाकर छोड़ा था और आज अपने आप विचार कर गया। नहीं मालूम नहीं, अब जन्म की प्रतीक्षा करना दूसरे को दुख देने वाला व्यक्ति सताने वाला व्यक्ति बड़ा हमारा है। हम लोग से अपने घरों में गाड़ी देते हैं, सांस देते हैं और मरने पर नरक में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई बिजली की बात नहीं है, जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है। पूरा लोक अंधकार हुआ है, इसीलिए उसे तमा और कैसा तमा अंधम तमा लाखों को अंधा कर कुछ दिखाई न पड़े ऐसा अंधकार है नरक, ऐसा लोक है कुछ भी नहीं सुनता है। तो अंधम तमम गंधता वो व्यक्ति घोर नरक में जाता है जो दूसरे को सता कर देता है जिन्हें से मर जाना है। इसलिए मैं देवगी का पर्व नहीं करूंगा। देवगी के पुत्र की हत्या करूंगा लेकिन देवगी का नहीं। इतना विचार आया कि भी ये लग रहा है बच्चे को मारना है क्योंकि हमारा शत्रु है, हमको पूर्व जन्म में मारा था। एक घोर तमाम भावा संतर स्वयं प्रभु सुखदेव गोस्वामी कंस को प्रभु कह रहे हैं। इस घोरतम भाव से निवृत्त हो गया, देवकी के पद का आग्रह छोड़ दिया। स्वयं किसी के समझाने से नहीं, अपने आप उस पर सब विचार आ गया। तो देवकी के पद से निवृत्त हो गया, पद के संकल्प से घोरतम भाव है। स्त्री का पद करना एक घोर है और धन का पद करना एक घोरतर है और गर्भिणी का पद करना घोरतम भाव है। लेकिन इस घोरतम विचार से कठोरतम विचार से स्वयं निवृत्त हो गया। कोई समझाया नहीं, कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था नया। इसलिए अच्छा अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी प्रभु कंस प्रभु जी अच्छा विचार आ गया। प्रभु का अर्थ है प्रभाव से समर्थ। तो इतना ज्ञान हो गया देवी को नहीं मारना चाहिए, प्रभु का ही काम है ना। इतना अच्छा विचार आ जाने से सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला कि कंस प्रभु है। जब प्रभु कंस मान गए आश्चर्य प्रतीक्षण तब जन्म कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करना। जब जन्म होगा बच्चे का प्रदान होगा, जब बच्चे को मारेगा तो इसका जस बढ़ेगा। देखिए हर व्यक्ति कुछ अच्छा विचार आया तो और गंदा विचार करेगा। स्त्री का व्रत करने से हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा पौरुष नष्ट हो जाएगा, हमारी आयु चली जाएगी और बच्चे की हत्या करने में आगे बढ़ जाएगी। आश्चर्य प्रतीक्षण तक जन्म हम उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरे फायदा उत्पन्न क्योंकि हरे के साथ वैर की गांठ बन गई। भगवान के साथ वैर गांठ बन गई, भगवान के साथ शत्रुता का भाव गया है। देवकी को नहीं मानना बच्चे को जन्मदिन मान देता है। इसीलिए अब अष्टमी तिथि की प्रतीक्षा प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भक्तों से ज्यादा प्रतीक्षा कर रहा है। आश्रय प्रतीक्षा दस जन्म हरे प्रकार आसीना आसीना जब बैठता था कर तब भी उसी के समचिंता कृष्ण का चिंतन करता सोते समय संकृषण का प्रदेश में जब बेड पर बैठता था तो उस समय जान कुछ खाता था तो भोजन का स्वाद नहीं लेता था तो कृष्ण का चिंतन करता था और उसको भय लगता था कि रोटी तोड़ूंगा तो उसमें से निकाला जाएगा। सुना था कि वो बहुत खतरनाक है भवन के खंभा में से निकाल जाता है। कहीं सोता था तो डर लगता था दीवार से निकल रहा है चलते समय पीते समय करता निराश लगाया मुझसे जूस पीना हो दूध पीना हो तो डरता था एक एक घंट पी रखे गिलास से निकल रहा इस तरह भगवान का चिंतन क्या किसी भक्त को ऐसा चिंतन होता है। इन प्रयोग से भगवान कृष्ण इंद्रियों के नियामक है अथवा कर्म के सारे इंद्रियों की वृद्धि कृष्ण के तरफ हो गई। कोई भी काम करता है मन हमेशा कृष्ण का चिंतन करता चिंता में हिस्से के साथ आवश्यक करना और सारे जगत को कृष्णमय देखता है। कहीं भी दृष्टि का किसी चिंतन होता है तो सब जगह कृष्ण दिखाई पड़ता है। मैं लगता था कि वो खिड़की से आ सकता और सोते समय सेवकों को कहता था खिड़की बंद है ना खिड़की बंद है सरकार अब गिर भी जाता है। दीपक से भी डरता है कि मोरू से विष्णु प्रकट हो जाए जगत विश्वमयम जगत सारे संसार को कृष्णमय देख रहा कृष्ण कहीं भी प्रकट हो मेरा प्राण दे सकता है। इसलिए कृष्ण को मारने के लिए उनके जन्म की प्रतीक्षा करना था। वो सोचा था कि जब जन्म देगा तो बच्चा रहेगा जैसे अन्य बच्चों को मार चुका हूँ तो वैसे ही उसको मार ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति में से कुछ कथाएं आगे बढ़ें। स्तुति कथा है जो श्लोक है बड़े सैद्धांतिक है, अतः स्तुति को पूरा करने में देर लगेगी, अतः कल से चालू कर देते हैं। हरे कृष्ण।